मैं विवेकानंद बीए द्वितीय वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप लोगों के लिए बीए समाजशास्त्र थर्ड पेपर के 3 चैप्टरों का भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिनमें शामिल है इस्लामीकरण, आधुनिकीकरण तथा संस्कृतिकरण। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे हम इस्लामीकरण की। इस्लामीकरण इस्लाम की परम्परा। योगेंद्र सिंह के अनुसार इस्लाम परम्परा गैर संस्तरणात्मक इस्लामी संपूर्णवाद मुस्लिम उम्मा की एकता अर्थात निष्ठा जन व्यक्तियों के एक समुदाय का प्रतीक है। यह एकता सैद्धांतिक रूप में किसी क्षेत्र अथवा राष्ट्र की सीमाओं में बंद नहीं है, बल्कि सदस्यों की उस समरूपता में देखी जा सकती है जो धार्मिक नैतिक नियमों तथा कुरान तथा हदीथ विभिन्न परंपराएं सरिया से उत्पन्न होती है। इस्लाम धर्म का जन्म एक घुमंतू लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में हुआ और इसकी सामाजिक संरचना में जनजातियों में पाई जाने वाली समानता देखी जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की संरचना बहुत दिनों तक नहीं चली। जब पैगंबर मोहम्मद मदीना आए तब इस्लाम के घुमंतू आर्थिक आधार को एक व्यवसायिक अर्थव्यवस्था मिली। इसके फलस्वरूप इस्लाम की एक ऐसी सामाजिक संरचना में एक जटिल व्यवस्था उत्पन्न हुई। इस्लाम की परंपरा में उग्रवादी गत्यात्मकता और वृद्धि हुई तथा पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम का प्रभाव सीरिया, इराक, पर्सिया तथा मिस्र तक फैल गया। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस्लाम की परंपरा में जो संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं वह निम्नलिखित थे। पहला, इस्लाम की राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति में समतावादी तथा प्रजातांत्रिक संरचना एक प्रकार के सामंतवादी तथा सत्तावादी प्रतिमान में ढल गई। दूसरा, पहले की राजनीतिक एवं धार्मिक नेतृत्व में पाई जाने वाली एकता कमजोर पड़ गई। जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे राजनीतिक और धार्मिक वर्गों के बीच विरोध बढ़ता गया। तीसरा, काफी संख्या में लोगों के इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेने के पश्चात इसमें उन बहुत सी संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को जोड़ दिया गया जो इस्लाम धर्म स्वीकार करने से पूर्व पाई जाती थी। इस्लामीकरण की अवधारणा। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार लघु परंपरा का आधार गांव में था, जिसमें अधिकांश लोग बिना पढ़े लिखे प्रकार के थे तथा इनका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं देखा जा सकता था। बृहत परंपरा का आधार शहरों में था, जिसमें अधिकांशतः पढ़े लिखे लोग थे जिनके स्वरूपों को स्पष्ट देखा जा सकता था। इस्लाम की लघु परंपरा इस्लामीकरण है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का विचार है कि जब हम इस्लामीकरण की चर्चा करते हैं तब हमारा संकेत मुसलमानों की सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन लाने के 3 प्रकार के आंदोलनों से होता है। एक, इस्लाम में परिवर्तन करके किन्हीं स्थिति समूहों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक रैखिक गतिशीलता लाना। दूसरे, इस प्रकार के आंदोलन करना जिनके द्वारा इस्लाम धर्म अंगीकार करने वालों में सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से इस्लाम के परंपरागत सिद्धांतों को पुष्ट करना। तीसरे, किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति तथा लाभ के लिए किन्हीं गैर मुसलमानों द्वारा इस्लाम के सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन प्रतिमानों को अपनाना। इन तीनों रूपों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम हिंदुओं के सांस्कृतिकरण तथा उनकी लघु परंपरा के समान ही समझ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हिंदू परंपरा की राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दशाओं में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे मुसलमानों का हिंदू परंपरा से अलगाव बढ़ता गया। धर्म परिवर्तन के द्वारा जो इस्लामीकरण होता था उसमें सदा ही आर्थिक लाभ नहीं होते थे, इसलिए बहुत से हिंदुओं ने यद्यपि इस्लाम धर्म को अंगीकार किया लेकिन फिर भी अपनी परंपरागत कला कौशल तथा व्यवहारों को अपनाए रखा और वह अपनी आर्थिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं लाए, लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन के द्वारा इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलती रही। कभी कभी इसमें बल प्रयोग भी किया गया। इस्लामीकरण की अवधारणा का प्रयोग मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक विश्वासों, मूल्यों एवं व्यवहार में होने वाले ऐसे परिवर्तनों के लिए किया जाता है जिनका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस्लाम धर्म की मान्यताओं एवं जीवन शैली से है। इस अवधारणा की मूल भावना में है कि धार्मिक परंपराएं सदैव स्थिर नहीं रहती, समय एवं स्थान की परिस्थितियों के अनुरूप धार्मिक परंपराओं में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन के कारक मुख्यतः वहां होते हैं किंतु कभी कभी आंतरिक शक्तियां भी धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन करती हैं, जो कि केंद्रस्थ परिवर्तन न होकर क्षैतिज परिवर्तन होते हैं। इस्लाम धर्म की परंपराओं में आस्था रखते हुए भारत में जो इस्लाम धर्म का स्वरूप विकसित हुआ, उसमें क्षेत्रीयता और अभियोजनशीलता की विशेषताएं प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होती है। इस्लाम धर्म का सर्वव्यापी स्वरूप और स्थानीय स्वरूप में अंतर एक व्यवहारिक स्तर पर इस्लाम धर्म की क्षेत्रीय विभिन्नता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर युगेंद्र सिंह ने इस्लामीकरण की अवधारणा का प्रयोग इसमें होने वाले आंतरिक परिवर्तन तथा इसकी बाह्य प्रभाव दोनों की को ही स्पष्ट करने के लिए किया है। प्रोफेसर युगेंद्र सिंह ने इस्लामीकरण की अवधारणा का प्रयोग मुख्यतः तीन अर्थों में किया है। अ, इस्लामीकरण एक सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता है जिसमें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के साथ समूह की सामाजिक स्थिति उन्नतशील हो जाती है। मुस्लिम शासनकाल में धर्मांतरण आर्थिक गतिशीलता का भी प्रतीक है। ब, इस्लामीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला समूह धार्मिक मामलों में अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी बन जाता है तथा वह इस्लाम धर्म की मूल परंपराओं को ग्रहण करने पर अधिक बल देता है। स, इस्लामीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गैर मुस्लिम समूह इस्लामिक जीवन शैली को अपनाता है। इस्लामीकरण मूल्यों और जीवन शैली को अपनाने की यह प्रक्रिया या तो शुद्ध रूप से सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम होता है या कोई समूह अपने विशिष्ट स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्लामी जीवन शैली को अपना लेता है। भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में इस्लाम धर्म की जीवन शैली को अपनाया जाना सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का प्रमुख माध्यम रहा है। मुस्लिम शासनकाल में अनेक हिंदू जातियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को विकसित करने का प्रयास किया था। कुछ उच्च जातियों के सदस्य मुस्लिम शासन में उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए यद्यपि इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, किंतु इस्लामिक जीवन शैली को बहुत बड़ी मात्रा में स्वयं अपना लिए। फारसी और उर्दू भाषा का हिंदुओं के द्वारा अपनाया जाना, शिष्टाचार के तरीकों को अपनाया जाना, वेशभूषा खान पान के इस्लामी तरीकों को अपनाया जाना इस प्रकार की गतिशीलता एवं परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण है। ब्रिटिश काल में मुस्लिम समुदाय ने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए एक नवीन प्रक्रिया को प्रारंभ किया जिसे पुनरुत्थानवादी प्रक्रिया कहा जा सकता है। ये प्रक्रिया आधुनिक भारत में अधिक विस्तृत हो गई जिसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए इस्लामिक परंपरा को अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ता से ग्रहण कर रहा है। यह प्रक्रिया यद्यपि आज के परिवेश में इस्लामिक मूलवादी के नाम से संबोधित की जाती है, किंतु इसे इस्लामीकरण की व्यापक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाना चाहिए। जहां तक इस्लाम धर्म की परंपराओं के आधुनिकीकरण का प्रश्न है, इस संबंध में दो प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक ओर इस्लाम धर्म के अनुयायियों का सामाजिक रूप से जागरूक और राजनीतिक रूप से सक्रिय अभिजात वर्ग आधुनिक शिक्षा के द्वारा सीमित मात्रा में आधुनिकीकरण का अनुमोदन करता है। वह यह वर्ग आधुनिक शिक्षा के द्वारा मुस्लिम समुदाय की आर्थिक गतिशीलता एवं राजनीतिक प्रभावशीलता की वृद्धि चाहता है, किंतु धार्मिक आचार संहिताएं परिवर्तन का साधन नहीं जुटा पाती। दूसरी ओर उलेमा वर्ग अपने धार्मिक नेतृत्व को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार की नवीनता एवं आविष्कार का अनुमोदन नहीं करता। शरीयत के कानून, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति, संपत्ति के उत्तराधिकार आदि क्षेत्रों में रूढ़िवादी विचारों को बनाए रखना चाहता है। अतः इस्लाम धर्म की मान्यताओं, मूल्यों और जीवन शैली में विभिन्न इस्लामिक संप्रदायों में अत्यधिक भेद पाया जाता है और इस मुस्लिम समुदाय में धार्मिक सुधार का कोई महत्वपूर्ण आंतरिक प्रयास देखने को नहीं मिलता है। आधुनिक समय में संसार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इस्लामीकरण की प्रक्रिया नवीन स्वरूप ग्रहण कर रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक इस्लाम धर्म की मूलभूत शिक्षाओं तथा परंपरागत इस्लामी जीवन शैली को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। शरीयत को केंद्र बिंदु मानकर संपूर्ण आचार संहिता को परिवर्तित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर इस्लामी मूल्यों, आदर्शों एवं इस्लामी ज्ञान का व्यापक दृष्टि से अधीन आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी इत्यादि को विश्लेषित किया जा रहा है। इन अर्थों में इस्लामीकरण की प्रक्रिया ज्ञान के समाजशास्त्र की एक अंग के रूप में आधुनिक विश्व की व्याख्या का प्रयास है। भारत में इस्लामीकरण की प्रक्रिया युगेंद्र सिंह के अनुसार भारत में इस्लामीकरण की प्रक्रिया 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरू हुई। भारत में इस्लाम की बृहत परंपरा में जो परसांस्कृतिक तथा अंतःजनित परिवर्तन हुए वे तीन अवस्थाओं से होकर गुजरे। पहली अवस्था थी भारत में इस्लाम शासनकाल की अवधि, दूसरी अवस्था भारत में अंग्रेजी शासनकाल के स्थापित होने के बाद शुरू हुई, तीसरी अवस्था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुई जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पहली अवस्था की अवधि 1206 से 1818 थी। इस अवधि में बहुत से संघर्ष और तनाव के साथ साथ हिंदू तथा इस्लाम की परंपराओं में काफी सांस्कृतिक समन्वय एवं अनुकूलन देखने को मिलता है। इस अवधि में मुसलमानों ने जिहाद किए और इस्लाम परंपरा का अधिक से अधिक विस्तार करने का प्रयास किया। इन प्रयासों में धर्मांधता के साथ साथ मुसलमान शासकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी परिचय मिलता है। भारत में इस्लाम की परंपरा का एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय पहलू को इस्लाम तथा हिंदू परंपराओं के सांस्कृतिक सह अस्तित्व में देखा जा सकता है। भारत में इस्लाम की परंपरा का महत्वपूर्ण वाहक विशिष्ट वर्ग को माना जा सकता है। वह इस्लामी समाज के कुलीन वर्ग से आया हुआ था। उनमें से अधिकांश लोग विदेशी थे और अशराफ जाति के थे अथवा मुसलमानों के चार महत्वपूर्ण आवासीय समूह के थे, सैयद, शेख, मुगल और पठान। इन चार समूहों में सैयद और शेख इस्लामी राजघरानों के थे जो परंपरागत रूप से उच्च धार्मिक पदों पर आसीन थे। इस्लाम परंपरा में इनका वही स्थान है जो हिंदू परंपरा ब्राह्मणों का। इसके विपरीत मुगल और पठान परंपरागत रूप से योद्धा सामंत तथा शासक थे। मुसलमानों की इन चार समूहों की एक जाति प्रकार की संरचना विकसित हो गई, इसलिए इनको भारत में इस्लाम की बृहत परंपरा का वाहक माना गया। अनेक मुस्लिम विद्वानों तथा शासकों ने अपने शासन काल में हिंदू परंपरा और इस्लाम परंपरा में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से अकबर ने दीन इलाही नाम का एक नया धर्म चलाया जिसको इस्लाम, जैन हिंदू तथा राष्ट्रीय धर्मों का एक मिश्रण कहा जा सकता है। दारासिकोह ने उपनिषदों के एकेश्वरवाद तथा इस्लाम के एकेश्वरवाद के बीच संबंध उत्पन्न करने का प्रयत्न किया और दोनों में पाई जाने वाली समानताओं पर बल दिया। अंग्रेजी शासन काल में इस्लाम की काफी परिवर्तन आया। धीरे धीरे मुसलमानों के विशिष्ट वर्ग अपनी पहले की प्रमुख स्थिति को खोने लगे। उनकी स्थिति को धक्का लगा, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को भी। अंग्रेजी शासन काल में इस्लाम की बृहत परंपरा को काफी ठोस लगने का कारण था। पहला, भारत के मुसलमान समुदायों में बाहर के मुसलमानों का आगमन बंद हो गया। दूसरा, मुसलमानों के उच्च वर्ग निर्धन हो गए तथा समाज के निम्न वर्गों में विलीन होने लगे। तीसरा, मुस्लिम शिक्षा की मात्रा एवं गुण दोनों का पतन होने लगा। चौथा, मुसलमानों का बुद्धिजीवी वर्ग भी उस समय के परिवर्तनों का शिकार हो गया और उनकी वृद्धि का हनन होने लगा। पांचवा, अंग्रेजों के आने से मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति में जो दमन हुआ उसके कारण मुसलमान समुदाय अंग्रेजों तथा संपूर्ण पाश्चात्य सभ्यता का विरोधी हो गया। 19वीं शताब्दी में इस्लाम की बृहत परंपरा में सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप यह दो संप्रदायों में बट गया। एक संप्रदाय उन लोगों का था जो उग्रवादी तथा शांतिपूर्ण सुधारों में विश्वास रखते थे तथा दूसरा संप्रदाय उग्रवादियों का था जो प्राचीन परंपराओं को बनाए रखने में विश्वास रखते थे। इन दोनों संप्रदायों के द्वारा इस्लाम परंपरा में अनेक मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हुए जिसका अंतिम परिणाम पाकिस्तान के बन जाने में देखा जा सकता है। इस समय तक इस्लाम की परंपरा में धीरे धीरे एक पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग का उद्भव हुआ। यह अभिजात वर्ग राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता के आधुनिक सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उलमाओं के धार्मिक वर्ग के साथ गठबंधन करके क्रियाशील देखा जा सकता था। इस प्रकार इस्लाम परंपरा के इस काल में हमें दो प्रकार के संबंधों की एक जटिल व्यवस्था के दर्शन होते हैं। एक प्रकार का संबंध लौकिक दृष्टिकोण वाले तथा परंपरागत दृष्टिकोण के वर्गों के बीच देखा जा सकता था, दूसरे इसको हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्गों के बीच देखा जा सकता था। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस्लाम की इन परंपराओं का बहुत महत्व रहा है। मुस्लिम वर्गों की अपनी उन दिनों की यादें अभी ताजा थी जिन दिनों में उनका आधिपत्य था और इन्हें एक सम्मानित स्थिति प्राप्त थी। उन्हें यह भी याद था कि किस प्रकार उन्हें इन दोनों की हानि हुई और परिणामतः उन्हें पीछे हटना पड़ा। मुसलमान वर्ग के लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू वर्गों के साथ इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि वह सोचते थे कि ऐसा करने से उन्हें एक ओर तो अंग्रेजी शासन से छुटकारा मिल जाएगा और दूसरी ओर उन्हें उनके पुराने अधिकार और शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अपने इस लक्ष्य की पूर्ति इन्होंने भारतीय एकता के दायरे में करने की कोशिश की। भारत में हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया हो कि मुसलमानों की समाज में कोई उच्च स्थिति हो। प्रत्येक हिंदू के लिए प्रत्येक मुसलमान अछूतों की श्रेणी में आता था। उसी प्रकार जैसा कि मुसलमानों में अशरफ लोग अन्य दूसरे मुसलमानों को समझते थे और उनसे एक प्रकार की सामाजिक दूरी बनाए रखते थे, यहाँ तक कि पवित्रता अपवित्रता के प्रतिमान भी व्यवहार में लाए जाते थे। मुस्लिम भंगियों को उनके गंदे का रहने के कारण मस्जिदों में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी। धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकांश प्रारंभिक जातिवादिता के सांस्कृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृथकताओं को बनाए रखते थे। इस प्रकार बहुत कुछ हिंदू परंपरा के समान ही इस्लाम परंपरा में भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के क्षेत्र में एक प्रकार का संस्तरण विकसित हो गया, जबकि इस्लामी परंपरा गैर संस्तरणवादी था। भारत में आए अशरफ लोग अपने को भारतीय मुस्लिम समुदाय में सबसे ऊंची श्रेणी का मानते थे। इसके बाद संस्तरण में उच्च जाति के हिंदू परिवर्तनकारियों का स्थान आता था, जैसे राजपूत लोग। इसके बाद हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित उन लोगों का स्थान था जिनकी स्थिति पहले ही निम्न होती थी। इसके बाद संस्तरण के सोपान में सबसे निम्न स्थिति हिंदुओं में अछूत समझे जाने वाले वे लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस प्रक्रिया का एक स्पष्ट परिणाम सांस्कृतिक सम्मिश्रण तथा सांस्कृतिक विस्तारवाद दोनों रूपों में देखा जा सकता था। जिन राजपूत लोगों ने इस्लाम धर्म को अंगीकार किया वह विवाह शादी तथा अन्य संस्कारों के मामले में अपने प्रारंभिक जाति प्रतिमानों को ही मानते थे। यही बात अन्य दूसरी जातियों के लिए भी लागू होती थी। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि मूल्य प्राथमिकताओं की संस्तरणात्मक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। उच्च जाति के मुसलमानों तथा उच्च जाति के हिंदू धर्म परिवर्तनकारियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक समन्वय तथा जीवन प्रतिमान एवं प्रथा निम्न जाति के मुसलमानों के लिए एक संदर्भ नमूना बना रहा। हिंदुओं में पाई जाने वाली सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया मुसलमानों में भी पाई जाती थी, जिसमें निम्न जाति के मुसलमान उच्च जाति के मुसलमानों की प्रथाओं को अपनाकर तथा उन जैसे नाम रखकर अपनी जाति स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करते थे। इस प्रक्रिया को इस्लामीकरण की प्रक्रिया कहा गया है। इस्लामीकरण में स्थिति परिवर्तन की महत्वाकांक्षा के साथ महत्वाकांक्षी समूह की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन लाना अनिवार्य था, क्योंकि इस्लामीकरण की प्रक्रिया एकतरफा थी। इस्लामी सामाजिक संरचना की परिधि में स्थिति गतिशीलता की प्रक्रिया तथा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में बहुत समानताएं देखी जा सकती हैं। दोनों ही प्रक्रियाओं में स्थिति परिवर्तन करने के लिए सांस्कृतिक रूप में उच्च स्थिति वाले समूहों के नाम तथा प्रथाओं को अपनाने का प्रयास किया जाता था। इन दोनों ही परिस्थितियों में सवर्ण समूहों की परंपरागत रूप से उच्च स्थिति होती थी। इसके अतिरिक्त दोनों ही प्रक्रियाओं में जाति गतिशीलता के महत्वाकांक्षी समूह अपनी आर्थिक स्थिति को उत्पन्न करने का भी आकांक्षा रखते थे। योगेंद्र सिंह के अनुसार इस्लामीकरण वास्तव में एक अस्तित्ववादी परिस्थिति की अभिव्यक्ति ही थी। स्थिति क्रम में निम्न समझे जाने वाले समूहों का कम से कम प्रतिरोध द्वारा उपलब्ध साधनों की विनियास द्वारा उच्च स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास था। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जिसमें स्थिति परिवर्तन किन्हीं दूसरे साधनों द्वारा करना संभव नहीं होता था, जैसे प्रजातांत्रिकरण, राजनीतिकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा इत्यादि के द्वारा, यह पाया जाना स्वाभाविक ही है कि सांस्कारिक प्रतीकों, जीवन प्रतिमानों, प्रथाओं, प्रचलनों के अपनीकरण में जाति की प्रमुख भूमिका होगी। इस्लामीकरण की प्रक्रिया भारतीय मुसलमानों में निरंतर बढ़ती हुई एक ऐसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है जिसमें सांस्कृतिक जीवन के परंपरागत इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार एक नई पहचान का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार के नव निर्माण में उन समन्वयात्मक तत्वों को मानने से इनकार किया जाता है जो इस्लामी संस्कृति हिंदुओं के समय से चली आ रही है। इसलिए बहुत से मुसलमान समुदाय जो निम्न हिंदू जातियों से धर्म परिवर्तन करके आए हुए होते हैं, वह हिंदू धर्म से इसके त्योहारों संस्कारों तथा देवी देवताओं से अपना संबंध बनाए रखते हैं। ऐसी स्थिति में वे जाति अंतर विवाहों एवं सगोत्र विवाह निषेधों के नियमों को भी स्वीकार करते हैं। इस्लामीकरण की प्रक्रिया ने मुसलमानों को हिंदू धर्म के क्रमिक सांस्कृतिक संबंधों से दूर ही रखा है। देश के विभाजन के बाद जिस प्रकार की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का इन्हें सामना करना पड़ा, उसमें इनको इसको एक सामान्य समाजशास्त्रीय प्रक्रिया ही माना जाना चाहिए कि उनमें अपनी पृथक पहचान करने तथा अपना राजनीतिक संग्रहण करने की तीव्र जागरूकता होती है। योगेंद्र सिंह के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन आंदोलनों के द्वारा हमें इस्लामीकरण की राजनीतिक अभिव्यक्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसको चुनाव की राजनीति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसा होना इस्लाम की नैतिक परंपरा से तालमेल रखता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस्लाम और हिंदू धर्म में एक प्रकार का सामंजस्य देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों धर्मों ने एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं को स्वीकार कर लिया हो और दोनों में कोई विरोध न हुआ हो। दोनों की परंपराओं में एक सांस्कृतिक पृथकता बनी रही। एक तरफ हिंदुओं में संप्रदायवादियों का एक वर्ग भारत में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता था और दूसरी तरफ मुसलमानों में भी कुछ राष्ट्रवादियों को छोड़कर एक ऐसा बहुसंख्यक वर्ग था जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से इस्लाम परंपरा को हिंदू परंपरा से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। किन्हीं अस्तित्ववादी परिस्थितियों ने भी इस पृथकता को बनाए रखा। धीरे धीरे इस्लामी परंपरा का राजनीतिकरण होने लगा और वह अपनी पृथक पहचान बनाए रखने के लिए और अधिक जागरूक बने रहे। संस्कृतिकरण तथा इस्लामीकरण में अंतर। संस्कृतिकरण के समान इस्लामीकरण को भी छद्मवेश में एक राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन माना जा सकता है, लेकिन आधुनिकीकरण से इसके संबंध को समझना इतना सरल कार्य नहीं है। लेकिन इन दोनों में एक तत्व समान रूप से देखा जा सकता है। चेतन अथवा अचेतन रूप में यह दोनों ही प्रक्रियाएं संस्तरण के सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह कही जा सकती है, लेकिन संस्कृतिकरण के द्वारा विरोध करने का अर्थ है परंपरा से छुटकारा पाना, जिसके द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आ सकती है। इसके तुलना में इस्लामीकरण में जब इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों का पुनरुत्थान करने का प्रयत्न किया जाता है, तब इससे प्रमुख धार्मिक वर्गों के प्रभुत्व से आधुनिकीकरण को बल नहीं मिलता बल्कि रूढ़िवादिता और अधिक दृढ़ होने लगती है। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदुओं में मुसलमानों के उलेमाओं के समान परंपरागत प्रतिमानों में अनुरूपता लाने के लिए एक संगठित धार्मिक इलिट वर्ग नहीं पाया जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ब्राह्मण महंतों की स्वीकृत प्राप्त नहीं होती, फिर भी यह चलती रहती है। इसके विपरीत इस्लामीकरण न केवल धार्मिक विशिष्ट वर्गों के द्वारा किया जाता है, बल्कि इसमें मुसलमान जन समुदायों को अपने प्रभाव में लाने का भरसक प्रयास किया जाता है। इस प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार का परंपराकरण करने वाला आंदोलन है। यह इस्लाम धर्म की लघु परंपरा पर बृहत परंपरा के अधिकाधिक प्रभुत्व का भी द्योतक है। राजनीतिकरण इसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसके द्वारा भी इस्लाम परंपरा की रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। आधुनिकीकरण में सांस्कृतिक उदारवादिता तथा व्यवहारिकता के तत्व निहित होते हैं। इस प्रकार के मूल्य एवं विशेष प्रकार के सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश में उत्पन्न होते हैं। एक ऐसा परिवेश जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि वह अपने सामाजिक भविष्य का स्वयं निर्माण कर सकते हैं, न कि यह पूर्व निर्धारित है। इसमें विरासत से अधिक उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का महत्व होता है। भारत में इस्लाम की परंपरा और आधुनिकीकरण। इस्लाम की सांस्कृतिक परंपरा आधुनिकीकरण की इन पूर्व आवश्यकताओं से कहां तक मेल खाती है, इस संदर्भ में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का मत है कि जाति प्रकार के संस्तरण सिद्धांत के रूप में इसमें परंपरावादिता का पाया जाना, धार्मिक पुनरुत्थान के प्रयत्न किया जाना, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सुधार, भारत के समकालीन इस्लाम में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो आधुनिकीकरण की मूल्य व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत एवं विरोधी हैं। इस प्रकार के सांस्कृतिक विरोध हिंदू धर्म में और इस्लाम में लगभग एक समान ही पाए जाते हैं। जैसे कि समाज का विभिन्न जातियों में संस्तरण पाया जाता, जो सामाजिक सहभागिता, सामाजिक गतिशीलता तथा वैयक्तिक योग्यता के द्वारा आगे बढ़ने की परिस्थितियों में बाधा उपस्थित करता है। लेकिन उलेमाओं के रूप में इस्लाम धर्म में एक ऐसा प्रभावशाली वर्ग विद्यमान है जो रूढ़िवादी शक्ति का काम करता है, जिसके समानता का वर्ग हिंदू परंपरा में विद्यमान नहीं है। इस्लाम परंपरा में आधुनिकीकरण के प्रति तीव्र विरोध का एक स्रोत इस्लामी धर्म की सामाजिक संहिताओं की अपरिवर्तनशीलता में भी देखा जा सकता है, भले ही यह सामाजिक संहिताएं प्रत्येक काल में बहुत कठोर न रही हो। इस्लाम धर्म को अपनाने में दूसरे संस्कृतियों की बहुत सी सामाजिक संहिताओं को अपना लिया गया, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि यह सामाजिक संहिताएं आधुनिकीकरण की मांगों के साथ भी अपना अनुकूलन कर लेंगी। परंपरागत रूप से इतिजहाद के द्वारा इस प्रकार के अनुकूलन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कार्लसन ने इस्लामिक कानून के विषय में बताया है कि इसमें वैधानिक आधुनिकवाद की प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार इस्लामिक कानून आधुनिकीकरण के प्रति जिस प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया कर रहा है, वह धीरे धीरे भारतीय समाज और संस्कृति का अंग बन जाएगी। जब तक ऐसा होगा भारत में इस्लाम की परंपरा में दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण हो चुका होगा। शिक्षा का क्षेत्र इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र होगा। प्रश्न यह उठता है कि क्या अकेले शिक्षा के द्वारा ही इस्लाम परंपरा में पर्याप्त आधुनिकीकरण लाया जा सकता है? कोई भी इस प्रश्न को मानने से इनकार नहीं कर सकता कि आधुनिक शिक्षा आज जिस तरह रूप में दी जाती है, विशेषकर उच्च स्तर पर, वह आवश्यक रूप से आधुनिकीकरण करने वाली है। इसकी मूल संरचना कार्यकारणवादी, उपयोगितावादी एवं संभावनावादी है। जिस विश्वव्यापी दृष्टिकोण पर इसको आधारित किया गया है, वह आवश्यक रूप से उदारवादी है। लेकिन यह बात केवल कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से के लिए ही सही हो सकती है, जिसको अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा के अनुरूप ढाला गया है, और इस रूप में भी यह केवल सिद्धांत में ही सही हो सकती है। व्यवहार में भारत के कॉलेजों से निकलने वाले स्नातक कहाँ तक वास्तव में आधुनिक मूल्यों का आंतरिकरण कर पाते हैं, इसका केवल कल्पना ही की जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में लगभग सभी समुदायों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षाएँ बढ़ी हैं। बहुत से राज्यों में लौकिकीकरण की नीति को दृढ़ करने की दृष्टि से तथा सांप्रदायिकतावाद के दर तत्व को समाप्त करने के लिए बहुत सी नीतियाँ अपनाई गई हैं, लेकिन इसमें सदा ही उन्हें सफलता नहीं मिली है और न ही इनको बिना भी प्रतिरोध के पूरी तरह स्वीकार किया गया हो। लेकिन फिर भी यह विश्वास किया जा सकता है कि एक लंबी अवधि में आधुनिक शिक्षा ऐसे परिणामों को उत्पन्न करेगी जो आधुनिकीकरण की संस्कृति के अनुरूप होंगे। इस्लाम का भारतीय समाज पर प्रभाव। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों का एक दूसरे के समाज पर प्रभाव पड़ा। इस्लाम का हिंदू समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, धार्मिक जीवन पर प्रभाव। मुसलमानों के आने से पहले हिंदुओं में धर्म के क्षेत्र में बाहा आडंबर और छुआछूत का विचार था तथा हजारों देवी देवताओं का पूजा पाठ प्रचलित था। इस्लाम में बहु ईश्वर पर विश्वास, छुआछूत और बाहरी आडंबर नहीं है। इसी कारण इससे प्रभावित होकर प्रत्येक संत साधुओं ने सब धर्मों की समानता और ईश्वर की एकता बल दिया, बाहरी दिखाव और छुआछूत की निंदा की, जन्म के स्थान पर कर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना और धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों के धर्म के नाम पर सामाजिक अन्याय की कटु आलोचना की। इन संत साधुओं में कबीर, नानक, चैतन्य, रामानंद आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके संरक्षण में इस्लाम की भांति समानता के सिद्धांत पर बल देने वाले भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो यह कि इसके द्वारा उस समय हिंदू धर्म में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया, और साथ ही साथ दूसरी ओर इन बुराइयों के दूर हो जाने पर यह आशा की गई कि हिंदुओं का इस्लाम धर्म के प्रति झुकाव घट जाएगा और वे धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना तथा सामाजिक धार्मिक बुराइयों को दूर करना था। कुछ विद्वानों का यह कथन है कि हिंदू धर्म पर इस्लाम के दो प्रभाव मुख्य हैं। क, इस्लाम के प्रचार संबंधी उत्साह ने भारत की जनता की अनुदार प्रवृत्तियों को पुष्ट किया। उनको यह विश्वास हो गया कि धर्म के क्षेत्र में अधिक कट्टर नीति को अपनाए बिना धर्म तथा समाज को इस्लाम के आघात से बचाना संभव नहीं है। इसलिए दैनिक जीवन में धार्मिक नियमों को इस युग में अधिक कठोरता से लागू किया गया। उतना पहले कभी नहीं देखा गया। श्रुतियों के आचार विचार के नए नियम बनाए गए। ख, हमारे धार्मिक नेताओं तथा सुधारकों ने इस्लाम के अलोक तंत्रवाद तांत्रिक सिद्धांतों को ग्रहण कर लिया तथा धर्म के क्षेत्र में समानता पर बल दिया और कहा कि धार्मिक समानता मोक्ष के मार्ग में बाधक नहीं हो सकती। जिन हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया वे अपने साथ अपने पूर्वजों के धार्मिक विचारों संस्कारों तथा कृत्यों को लेते गए। मुसलमानों में फकीरों पीरों तथा मकबरों की पूजा प्रचलित हो गई। यह हिंदुओं में प्रचलित स्थानीय तथा जातीय देवताओं की पूजा का ही दूसरा रूप था। कुछ विद्वानों का कथन है कि मुसलमानों के रहस्यवाद विशेष कर सूफी पंथ को हिंदू वेदांत से प्रेरणा मिली थी। कुछ मुसलमान विद्वानों ने वेदांत आदि हिंदू दर्शन का भी अध्ययन किया। दूसरा, जाति प्रथा पर प्रभाव। इस्लाम के प्रभावों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं ने धर्म संबंधी तथा जाति प्रथा संबंधी नियमों को बहुत कठोर बनाया और उन्हें दृढ़ता से लागू किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जातीय संरचना में और भी रूढ़िवादिता एवं संकीर्णता पनपी। ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति को ऊंचा बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न किया परंतु उनका यह प्रयत्न पूर्णतया सफल नहीं हुआ। कुछ जातियों को विशेषकर कायस्थ खत्री और क्षत्रियों को मुसलमान शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ प्राप्त था जिसके कारण इन जातियों को अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का अवसर प्राप्त हुआ और वास्तव में सामाजिक जीवन में इनकी प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। कुछ विद्वानों का कथन है कि मुसलमान शासकों की संरक्षा के फलस्वरूप ही कायस्थों की स्थिति इतनी ऊंची उठ गई थी कि उनकी गणना ब्राह्मणों के बाद होने लगी। अनेक राजपूत घरानों का वैवाहिक संबंध मुसलमान राजवंश से स्थापित हो गया। फलतः इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा शासक वर्ग के बाद मानी गई। इन सब हेर फेर के कारण ब्राह्मणों की स्थिति तथा प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचा। जिन रक्षात्मक उपायों को अपनाया गया उनसे जातीय नियम और भी अनुदार एवं कठोर हो गए। ब्राह्मणों की अनुदार और कठोर नीति के मुख्य शिकार निम्न जाति के सदस्य थे जिनमें से कुछ ने इस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम धर्म को स्वीकार करना उचित समझा। इसका फल यह हुआ कि निम्न जाति की सदस्यता कुछ कम हुई। इस काल में हिंदू जाति संरचना में यह एक उल्लेखनीय परिवर्तन था। 13वीं शताब्दी के अंत में जब मध्य एशिया के देशों से असंख्य मुस्लिम शरणार्थी भारत में आए तो शासक वर्ग की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई। इससे विभिन्न मुस्लिम नस्लों तथा जातियों में परस्पर सम्मिश्रण भी आरंभ हो गया और अंतरजातीय विवाहों के कारण धीरे धीरे वे एक दूसरे से पूर्णतया घुल मिल गए। रक्त की शुद्धता का जिस पर उदंड तुर्कों घमंड था वह वर्ग समाप्त हो गया और विभिन्न प्रजाति तथा सांस्कृतिक तत्वों के मिलन से मुसलमानों की एक नई जाति बन गई। दूसरी ओर वे लोग थे जिन्होंने अपना धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। इनकी संख्या मुस्लिम राज्य तथा सत्ता के प्रसार के साथ साथ बढ़ती गई। ऐसे लोगों ने मुस्लिम सामाजिक संरचना में एक नई जाति का निर्माण किया परंतु इनको शासक वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया और न ही आर्थिक तथा सामाजिक विशेषाधिकारों में इन्हें कोई हिस्सा दिया गया। इनकी सामाजिक स्थिति शासक वर्ग के मुसलमानों से स्पष्टतः नीची बनी रही। वे केवल शुक्रवार के दिन शासकों के साथ खड़े होकर मस्जिद में नमाज पढ़ लेते थे। यही परिस्थिति बहुत दिनों तक बनी रही परंतु बाद में शाहजहां अकबर आदि उदार मुस्लिम शासकों के समय में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय मुसलमानों को नियुक्त किया गया जिससे उन्हें भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को कुछ और ऊपर उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु इनकी भी संख्या बहुत सीमित थी। जो हिंदू मुसलमान बन गए और जिन्हें अपनी सामाजिक स्थिति को उठाने का कोई भी अवसर नहीं मिला उन्होंने छोटे मोटे उद्योग धंधों को अपनाया और मुसलमान व्यवसायिक जातियों का निर्माण किया। कुछ अस्पृश्य जातियों के हिंदुओं ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार किया परंतु इस धर्म परिवर्तन के बाद भी उनकी सामाजिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि मुसलमानों ने एक और अपनी नीति से हिंदुओं की जाति प्रथा को प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप जाति प्रथा के परंपरागत स्वरूप में बहुत कुछ हेरफेर हुआ और दूसरी ओर स्वयं भी जाति प्रथा से प्रभावित हुए। इन दोनों प्रकार के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, हिंदू जाति व्यवस्था जाति संस्करण के अंतर्गत जिस जाति की जो स्थिति पहले थी वह उस रूप में बनी रही। कायस्थों की सामाजिक स्थिति उच्च हुई, उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की भी जाति प्रतिष्ठा में कुछ न कुछ हेरफेर अवश्य ही हुआ। दूसरा, मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात जाति प्रथा के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रतिबंध दिन प्रतिदिन दुर्बल होते गए। पेशा परंपरागत अवश्य था, पर साथ ही यह जरूरी नहीं था कि सब या अधिकतर जातियां उसी के द्वारा अपने जीविका निर्वाह करें। तीसरा, अकबर ने भारत के इतिहास में सबसे पहले सरकारी स्कूल खोले जिसमें हिंदू और मुसलमान बच्चों को एक साथ फारसी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसका प्रभाव जाति प्रथा की कट्टरता पर पड़ा और हिंदू एवं मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का मनोभाव विकसित बढ़ता गया। चौथा, कबीर, नानक, चैतन्य आदि के निर्देशन में जो भक्ति आंदोलन चला उससे उसमें जाति प्रथा के अंतर्गत पाए जाने वाली कठोरता, छुआछूत आदि को काफी धक्का लगा और कुछ सीमा तक वे दुर्बल भी हो गए। इस आंदोलनों का ब्राह्मणों के तानाशाही पर भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अनेक शूद्र संत जैसे नामदेव तुकाराम आदि के प्रयत्नों से शूद्रों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। पांचवा, ब्राह्मणों की रक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण जाति नियम विशेषकर विवाह संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो गए। तीसरा, विवाह पर प्रभाव, हिंदुओं ने अपनी रक्षा के लिए विवाह के संबंध में विशेष कठोरता अपनाई। मुसलमान शासकों को सुंदर हिंदू स्त्रियों, लड़कियों और अपनी पत्नियां बनाने का शौक था। यहाँ तक कि विधवाओं से भी विवाह संबंध स्थापित करने में उन्हें कोई आपत्ति न थी। हिंदू लड़कियों या विधवाओं का विवाह संबंध मुसलमानों के साथ स्थापित न हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चार उपायों को अपनाया गया। पहला, हिंदुओं में बाल विवाह एक सामान्य नियम बन गया और लड़कियों के विवाह की आयु 8 से 9 वर्ष तक उतर आई। यही नहीं, गर्भ विवाह का भी प्रचलन इस युग में हुआ। गर्भवती स्त्रियां ज्योतिषियों से पूछताछ या स्वयं ही होने वाले बच्चों के लिए लिंग के संबंध में अनुमान लगा लेती थी और उसी आधार पर जन्म से पहले ही या तो विवाह संपादित हो जाता था अथवा लड़की वागदत्ता मान ली जाती थी और बड़ी होने पर उसका विवाह उसी पूर्व निर्धारित लड़के से कर दिया जाता था। दूसरा, उच्च तथा मध्य जातियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन तेजी से किया गया। इसका उद्देश्य लड़कियों की गतिशीलता पर रोक लगाना था ताकि किसी भी रूप में इनका संबंध मुसलमानों से स्थापित न हो सके और इनके साथ विवाह की कोई संभावना उत्पन्न न हो। इस पर्दा प्रथा के कारण शिक्षा का पूर्ण अभाव हो गया। तीसरा, विधवाओं के पुनर्विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रतिबंध के साथ अनेक धार्मिक तथा नैतिक विचारों को जोड़ दिया गया था। इन सब का परिणाम यह हुआ कि उस युग में कुछ नीचे जातियों को छोड़कर अन्य लोगों में विधवा विवाह का विचार ही जाता रहा। चौथा, सती प्रथा के आदर्शों को और भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत स्त्रियों के दिल और दिमाग में यह बात भर दी गई कि मृत पति की चिता में जलकर मर जाना पत्नी के लिए सबसे पुण्य का कार्य है और इससे सीधे स्वर की प्राप्ति होती है। बहुत सी स्त्रियों ने इस आदर्श को सहर्ष स्वीकार किया और धीरे धीरे यह प्रथा एक कठोर रूढ़ी के रूप में विकसित हो गई। हिंदू धर्मशास्त्र के निर्देशानुसार उस समय प्रचलित बाल विवाह का आदर्श इतना प्रभावशाली प्रतीत हुआ कि मुसलमानों ने भी इसे अपनाया। मुसलमानों में इसके प्रचलन का कारण यह था कि भारत के अधिकतर मुसलमान जातियां मूलतः हिंदू ही थे और वे मुसलमान बन जाने के बाद भी अपने बाल विवाह संबंधी अपनी पुरानी प्रथा को न छोड़ सके। फलतः मुसलमानों में भी बाल विवाह का प्रचलन हो गया और उनके कानून ने इस प्रकार के विवाहों को स्वीकार कर लिया तथा हिंदुओं की भांति कुछ मुसलमानों ने दहेज की तरह वर मूल्य प्रथा का भी प्रचार हो गया। चौथा, सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों पर प्रभाव और संयुक्त परिवार। अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान बन गए थे। इस कारण हिंदुओं के पारिवारिक जीवन की अनेक विशेषताएं मुसलमानों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर गई। इससे स्पष्ट है कि हिंदुओं के पारिवारिक स्वरूप पर इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिक्षा पर यह प्रभाव पड़ा कि एक ओर पुरुषों में तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा का विस्तार हुआ और दूसरी ओर बाल विवाह और प्रथा चरम सीमा पर होने के कारण स्त्रियों की शिक्षा बिल्कुल समाप्त हो गई। वेशभूषा, मुसलमानों के चूड़ीदार पजामा तथा अचकन या शेरवानी को हिंदुओं ने अपना लिया। इसका प्रचलन विशेषकर ऊंची स्थिति वाले राजपूतों तथा कायस्थों में हुआ। मुसलमानों ने हिंदुओं की पगड़ी को अपनी वेशभूषा में अपनाया। भोजन, मुसलमानों के आने के बाद से मांस मछली अंडा आदि का प्रचलन बढ़ता गया, विशेषकर उन हिंदुओं में जिनका मुसलमानों से घनिष्ठ संबंध था। मुसलमानों ने भारत में बालूशाही, कलाकंद, गुलाब जामुन, बर्फी, हलवा, इमरती, जलेबी आदि मिठाइयों को प्रचलित किया। यह स्थापित कला पर प्रभाव, जिस समय तुर्कों ने हमारे देश को जीता उस समय तक मध्य एशिया की विभिन्न जातियां स्थापित की एक विशिष्ट शैली विकसित कर चुकी थी, जो वहां के स्थानीय शैलियों तथा ट्रांस अक्सियाना, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी यूरोप के देशों तथा मुस्लिम अरबिया की शैलियों के सम्मिश्रण से बनी थी। और इस स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं गुंबज, ऊंची मीनारे, मेहराब तथा तहखाना थी। इस शैली को तुर्की विजेता अपने साथ भारत में लाए और यहां आने के बाद इस शैली का भारतीय स्थापत्य कला के साथ समन्वय हुआ। चित्रकला पर प्रभाव, मुसलमान बादशाह स्वयं में ही कलाप्रिय थे। बाबर स्वयं एक चित्रकार था और अपनी मातृभूमि के पुस्तकालय से ट्यूराइड चित्रकारी के बहुत से उत्तम नमूने अपने साथ ले आया था। हुमायूं ने ईरान से मीर सैयद अली तबरीजी और ख्वाजा अबू रसमद सिराजी नामक दो निपुण चित्रकारों को बुलाया था। अकबर को भी चित्रकारी और शिल्पकारी से काफ़ी लगाव था। अकबर के समय में हिंदू तथा चीनी ईरानी चित्रकार के तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। प्रारंभ में ईरानी प्रभाव अधिक था, पर बाद में वह धीरे धीरे कम होता गया और भारतीय तत्वों की प्रधानता होती गई। जहांगीर के समय तक मुगल चित्रकला का पूर्ण विकास हो चुका था। जहांगीर के चित्रकारों ने अकबर के काल के चित्रों से ही कहीं अधिक उत्तम प्रकार के चित्रों का सृजन किया। जहांगीर के काल में धार्मिक चित्रों में इस्लाम धर्म संबंध चित्रों का अभाव है, क्योंकि इस्लाम धर्म चित्रकला का विरोधी है। अतः जहांगीर के समय में रामायण, महाभारत आदि हिंदू धर्म ग्रंथों के चित्रों को अंकित किया गया है। इस समय बने मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों, लता पुष्पों, पक्षियों आदि के सभी चित्र बहुत वास्तविक हैं। वास्तविकता या स्वाभाविकता उस समय की चित्रकला की सर्व प्रमुख विशेषता थी। इसकी दूसरी विशेषता रंगों का सुरुचिपूर्ण समन्वय था। जहांगीर के पश्चात मुगल चित्रकला का पतन प्रारंभ हुआ। संगीत पर प्रभाव, संगीत को इस्लाम में बुरा बताया गया था, लेकिन फारस में सूफियों के साथ मुसलमानों का संबंध होने पर और बाद में संगीत प्रेमी हिंदुओं के साथ भी संपर्क स्थापित होने के कारण उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। एक और सूफी लोग संगीत को आत्मा से ऊंचा उठाने तथा आध्यात्मिक उन्नति का एक माध्यम साधन समझते थे। दूसरी ओर हिंदू लोग भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर संगीत समारोह का आयोजन करते थे। संगीत का आकर्षण इतना प्रबल था कि पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार नहीं किया जा सका। इसलिए दिल्ली के सुल्तानों के समय में ही कुछ उल्लेखनीय गायक हुए, जिनमें कवि अमीर खुसरो का प्रथम स्थान था। मुसलमान शासकों की प्रचेष्टा से प्राचीन भारतीय तथा ईरानी संगीत कलाओं का समन्वय हुआ और एक नई जीवन शैली, एक नई शैली का जन्म हुआ। लोचन कवि की राग तरंगनी इस काल की रचना है। सम्राट अकबर के शासनकाल में भारतीय संगीत का विकास और भी तेजी के साथ हुआ। उसके शासनकाल में रागों के ऊपर विदेशी प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप उत्तरी भारत के संगीत के रूप में परिवर्तन हुआ। सम्राट अकबर को स्वयं संगीत से बहुत प्रेम था और इसलिए उन्होंने संगीतज्ञों को प्रचुर संरक्षण प्रदान किए। ग्वालियर के राजा मानसिंह उस समय संगीत के प्रमुख आश्रयदाताओं में थे। गायन की ध्रुपद शैली की रचना का आश्रय उन्हीं को दिया जाता है। अकबर के समय में ख्याल का भी आविष्कार हुआ। द्रुतलय का भी प्रचार उसी जमाने में हुआ। जहांगीर के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में बिलास खां, छतर खां, खुर्रमदार, मखू और हमजान के नाम उल्लेखनीय हैं। उसी प्रकार शाहजहां के भी दरबार में कई प्रसिद्ध संगीतकार थे। हिंदू और पारसी शैलियों के सम्मिश्रण से इस समय गायन और संगीत की नई रीतियों का जन्म हुआ। आर्थिक संस्थाओं पर प्रभाव, आर्थिक विकास की ओर मुस्लिम शासकों का पर्याप्त ध्यान था। उस समय हमारे देश की संपत्ति का मुख्य साधन कृषि था। रुई, गन्ना, तिलहन आदि बड़े पैमाने पर उत्पन्न किए जाते थे। साथ ही साथ नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग धंधे भी चलते थे। दिल्ली के सुल्तानों के अनेक कारखाने थे, जिनमें रेशम तथा अन्य प्रकार का कपड़ा बुनने के लिए सहस्त्रों जुलाहे कार्य करते थे। निजी उद्योगों में सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों, रंगाई, वस्त्रों की छपाई, शक्कर, धातु, कागज, पत्थर, ईंट, पच्चीकारी, कलाई आदि के धंधों का विकास मुस्लिम काल में विशेष रूप में हुआ। इन शासकों के संरक्षण में हमारे देशवासी बड़े पैमाने पर विदेशी तथा देशी व्यापार किया करते थे। कृषि की उपज सूती तथा रेशमी वस्त्र, अफीम, नील, जस्ता आदि वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी, जबकि घोड़े, खच्चर तथा राजपरिवार में समुद्र की विशाल वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती थी। शाहजहां काल में पुर्तगाल तथा अन्य यूरोपीय देशों से भी धीरे धीरे पारस्परिक संबंध स्थापित होता रहा। मुस्लिम शासन काल में हमारे देश में धन के वितरण में बहुत विषमता थी। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय आर्थिक समस्याओं संस्थाओं पर मुसलमानों का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा, देश का परंपरागत स्वरूप ही बहुत कुछ बना रहा। निष्कर्ष: उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मुसलमानों के समय में हिंदू और मुस्लिम संस्थाओं का एक दूसरे पर घनिष्ठ और आंतरिक प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप दोनों की ही सामाजिक संस्थाओं में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इन दो संस्कृतियों का समन्वय ही इसका कारण नहीं है, बल्कि इसका पारस्परिक संघर्ष भी संस्थात्मक परिवर्तनों का कारण बन गया था। फिर भी यह सत्य है कि मुस्लिम तथा भारतीय संस्थाओं की मूल विशेषताएं इस संघर्ष और समन्वय के फलस्वरूप पूर्णतः नष्ट नहीं हुई और वे अपनी विशेषताओं को बनाए रखने में सफल हुए। इसके कारण भी है कि दोनों ही संस्कृतियों तथा जीवन की विधियों में कुछ मौलिक अंतर था, जिसके कारण यूनानी, शक, हूण आदि प्रारंभिक आक्रमणकारियों की भांति मुसलमानों का हिंदू समाज में पूर्ण विलय न हो सका। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि हिंदू संस्कृति का प्रभाव अत्यधिक ही था।